एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज ज्ञान गोष्ठी में हम सफर करेंगे प्राचीन यूनान और रोम की गलियों में। एक ऐसे दार्शनिक से मिलेंगे जिनके विचार सदियां बीत जाने के बाद भी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
जी,
हम बात कर रहे हैं सेक्सटस एम्पिरिकस की। यह थे लगभग दूसरी तीसरी सदी ईस्वी में।
हाँ, ये नाम शायद प्लेटो या अरस्तु जितना आम न हो, पर सेक्सटस एम्पिरिकस बहुत जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि प्राचीन यूनानी संशयवाद, जिसे पिरोनिज्म कहते हैं ना,
हाँ पिरोनिज्म,
उसके विचारों को हम तक पहुंचाने वाले ये सबसे बड़े स्रोत हैं। और उनका दर्शन वो सिर्फ शक करना नहीं सिखाता, जैसा लोग आमतौर पर समझ लेते हैं,
अच्छा तो फिर क्या है,
बल्कि ये दिखाता है कि संदेह के रास्ते से एक खास तरह की मानसिक शांति, जिसे यूनानी में कहते थे अटरेक्सिया, वो कैसे पाई जा सकती है।
संदेह से शांति? ये तो सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है, विरोधाभासी। हम तो सोचते हैं ज्ञान से, पक्की बात से शांति मिलती है।
बिल्कुल,
और इनका तरीका था निर्णय को टाल देना, स्थगित करना, जिसे अपोखे कहा।
जी, अपोखे।
ये तो वाकई बहुत गहरा विचार है। चलिए आज इसी अनोखे दर्शन को थोड़ा कुरेदते हैं, इसकी परतें खोलते हैं।
हाँ बिल्कुल। देखिए, सेक्सटस जिस जमाने में थे, दूसरी तीसरी सदी का रोमन साम्राज्य।
हाँ, रोमन शांति।
ऊपर से तो शांति थी, स्थिरता थी, लेकिन विचारों की दुनिया में वहां तो महासंग्राम चल रहा था। स्टोइज्म, एपिक्यूरियनिज्म, प्लेटोनिज्म,
अरिस्टोटेलियनिज्म भी।
हाँ, ये सारे दर्शन अपने अपने तरीके से बता रहे थे कि भाई, जीवन की अंतिम सच्चाई ये है, अच्छा जीवन ऐसे जिया जाता है, पूरे आत्मविश्वास से। ब्रह्मांड कैसा है, आत्मा क्या है, क्या सही है क्या गलत, सब पर पक्के दावे थे।
मतलब सबने अपने अपने सच का झंडा गाड़ रखा था। इन्हीं को शायद डॉगमैटिक स्कूल कहते थे, हठधर्मी, क्योंकि वो किसी न किसी सिद्धांत, किसी डॉगमा पर टिके थे।
बिल्कुल सही कहा। डॉगमैटिक मतलब ही है सिद्धांतों पर जम जाना, ये मान लेना कि बस हमें परम सत्य मिल गया। स्टोइक कहते थे तर्क और प्रकृति के हिसाब से जियो, वही सद्गुण है। एपिक्यूरियन कहते थे सुख ही लक्ष्य है, पर वो वाला सुख नहीं, मतलब परिष्कृत सुख।
हाँ हाँ सिर्फ भोग विलास नहीं।
जी, तो ये सब बड़े बड़े दावे थे। अब इसी माहौल में पिरोनियन संशयवाद, जिसकी जड़ें जाती हैं पिरो ऑफ एलिस तक।
अच्छा, उनसे शुरू हुआ ये।
हाँ, वो एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखा रहा था, जहां बाकी सब दावा कर रहे थे कि हम जानते हैं। संशयवादी पूछ रहे थे, क्या हम वाकई जान सकते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानने की जिद ही हमारी सारी बेचैनी की जड़ है।
ये तो उस वक्त के बौद्धिक माहौल के लिए बड़ी चुनौती रही होगी। तो सेक्सटस ने इसी परंपरा को, इसी सोच को आगे बढ़ाया?
न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि उसे सहेजा, उसे एक व्यवस्थित रूप दिया और बहुत विस्तार से लिखा। इसीलिए आज हम पिरोनिज्म के बारे में जो भी ठीक ठाक जानते हैं ना, उसका लगभग सारा श्रेय सेक्सटस को ही जाता है।
कमाल है।
और सोचिए, उनके समकालीन कौन थे? सम्राट मार्कस ऑरेलियस, जो खुद स्टोइक दार्शनिक थे।
हाँ, मेडिटेशंस वाले।
जी, और मशहूर चिकित्सक गैलेन। क्या जबरदस्त बौद्धिक माहौल रहा होगा।
पर सेक्सटस के अपने जीवन के बारे में, उनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी तो बहुत कम है ना?
हाँ, ये बात सही है। उनके निजी जीवन के बारे में पुख्ता सबूत तो न के बराबर है, लेकिन उनके नाम में जो एम्पिरिकस जुड़ा है ना,
हाँ एम्पिरिकस,
वो एक बड़ा इशारा है। अंदाजा ये है कि वो शायद चिकित्सा के एम्पिरिकल स्कूल से जुड़े थे, अनुभवजन्य स्कूल।
अच्छा, मतलब अनुभव पर आधारित।
जी, ये स्कूल क्या करता था कि बीमारियों के छिपे हुए सैद्धांतिक कारणों पर अटकले नहीं लगाता था, जैसे वो चार ह्यूमा वाली थ्योरी थी ना।
हाँ, कफ पित्त वात वो सब।
हाँ, तो उस पर अटकले लगाने के बजाय ये स्कूल सीधे सीधे जो लक्षण दिख रहे हैं, मरीज को क्या महसूस हो रहा है, और पुराने दर्ज मामलों का इतिहास क्या कहता है, मतलब एम्पीरिया, उसके आधार पर इलाज पर जोर देता था।
अरे वाह, ये तो कमाल की कड़ी है। मतलब उनका डॉक्टरी का तरीका और उनका दर्शन कितने मिलते जुलते थे। जैसे डॉक्टर लक्षणों को देखकर अनुभव से इलाज करता है, बिना ये दावा किए कि उसे बीमारी की असली जड़ पता है।
बिल्कुल,
वैसे ही दार्शनिक भी दुनिया जैसी दिख रही है उसके आधार पर जीता है, बिना ये जिद किए कि उसे उसकी असली प्रकृति पता है।
आपने एकदम सही नस पकड़ी है, यही तो उनके दर्शन का सार है। जैसे वो एम्पिरिकल डॉक्टर कहेगा, देखो भाई, मुझे नहीं पता इसका असली कारण क्या है, पर मैंने देखा है कि ये दवा ऐसे लक्षणों में काम कर जाती है। वैसे ही सेक्स्टस का संशयवादी कहता है, मुझे नहीं पता कि दुनिया असल में कैसी है, लेकिन ये मुझे ऐसी दिखाई दे रही है फिनोमेना, और मैं इसी दिखावे के अनुसार जीऊंगा।
फिनोमेना मतलब जो प्रकट हो रहा है, जो दिख रहा है।
बिल्कुल। और माना जाता है कि वो शायद अलेक्जेंड्रिया, एथेंस या रोम जैसे बड़े शहरों में रहे होंगे।
बिल्कुल।
उस समय के बड़े बौद्धिक केंद्र थे ये।
हाँ, ज्ञान के गढ़।
जी, वहां पढ़ाया भी होगा और शायद संशयवादी स्कूल के प्रमुख भी रहे हों।
तो अब आते हैं उनके दर्शन के जो मुख्य विचार हैं उन पर। आपने एपोखी की बात की थी, निर्णय का स्थगन। ये काम कैसे करता है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ?
देखिए, एपोके उनके दर्शन का कह सकते हैं दिल है। सेक्स्टस कहते हैं कि जब भी हम किसी ऐसे मामले पर सोचते हैं जो सीधे सीधे आंखों देखा या कानों सुना नहीं है, मतलब गैर स्पष्ट मामला, जैसे आत्मा अमर है या नहीं, दुनिया किससे बनी है।
हाँ, बड़े दार्शनिक सवाल।
बिल्कुल। तो हमें अक्सर दो विरोधी तर्क मिलते हैं और दोनों बराबर वजनदार लगते हैं। एक कहता है हाँ, दूसरा कहता है नहीं, और दोनों के पास अपनी अपनी मजबूत दलीलें होती हैं।
तराजू के दो पलड़े बराबर।
हाँ, इसी स्थिति को वो कहते हैं तर्कों की समानता या समबलता, आइसोस्थीनिया। अब जब ऐसी हालत हो तो जो हठधर्मी विचारक है वो क्या करेगा, वो एक पल्ला चुन लेगा और दावा करेगा कि यही सही है।
हाँ, वो तो अपना पक्ष लेगा ही।
लेकिन संशयवादी कहता है, भाई जब दोनों पल्ले बराबर हैं तो मैं क्यों फैसला सुनाऊं। वो अपना निर्णय स्थगित कर देता है, रोक देता है। यही एपोक है।
और इस निर्णय को रोक देने से, इस पता नहीं की हालत में रहने से शांति कैसे मिलती है, ये थोड़ा और समझाएंगे। ये कनेक्शन थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
हाँ, ये थोड़ा उल्टा लगता है, पर सेक्स्टस का तर्क ये था कि हमारी जो ज्यादातर मानसिक चिंता है, बेचैनी है, बहसें हैं, झगड़े हैं, उनकी जड़ यही हठधर्मिता है, ये जिद कि मैं सही हूं या मैंने सच जान लिया है। जब हम किसी एक विचार से चिपक जाते हैं ना, तो उसके खिलाफ आने वाली हर बात से हम लड़ने लगते हैं, परेशान होते हैं। संशयवादी क्या करता है, वो इस दिमागी कुश्ती से ही बाहर निकल जाता है।
अच्छा।
जब वो देखता है कि हर तर्क के सामने एक बराबर का विरोधी तर्क है, तो उसे लगता है कि भाई अंतिम सत्य शायद पकड़ से बाहर है। जब ये एहसास होता है और वो निर्णय रोक देता है, एपोके, तो वो उस टेंशन से, उस खिंचाव से आजाद हो जाता है जो किसी एक पक्ष को सही साबित करने की कोशिश में लगा रहता है।
हाँ, वो जो जिद होती है।
बिल्कुल। इसी आजादी से उसे मिलती है अटरेक्सिया, मन की शांति, एक ऐसी स्थिरता जो बाहरी बातों या दिमागी बहसों से ज्यादा हिलती डुलती नहीं।
लेकिन यहाँ वो व्यवहारिक जीवन वाला सवाल फिर से आ जाता है, अगर मैं हर चीज पर फैसला टाल दूं तो क्या मैं जी पाऊंगा, कहीं मैं एकदम लकवाग्रस्त तो नहीं हो जाऊंगा, रोज के छोटे मोटे फैसले कैसे करूंगा।
हाँ, ये सवाल हमेशा से संशयवाद पर उठता रहा है। इसे कहते हैं अप्रैक्सिया का आरोप, यानी निष्क्रियता का। लेकिन सेक्स्टस इसका बहुत साफ जवाब देते हैं।
क्या जवाब है?
वे कहते हैं कि संशयवादी जीता है, बिल्कुल जीता है, और कैसे जीता है, जैसा दिख रहा है फाइनोमेना उसके अनुसार। वो अपनी कुदरती जरूरतों जैसे भूख प्यास,
हाँ,
अपनी इंद्रियों के संकेतों जैसे आग गर्म है, पानी ठंडा, अपने समाज की जो रस्में हैं, कानून हैं, और जो उसने कला या हुनर सीखा है उसके हिसाब से काम करता है।
अच्छा।
लेकिन वो ये सब इसलिए नहीं करता कि वो इन्हें अंतिम सत्य मानता है, नहीं, बल्कि इसलिए कि ये जिंदगी जीने के व्यवहारिक तरीके हैं। जैसा उसे अनुभव हो रहा है वो वैसा करता है।
कोई ठोस उदाहरण, जैसे शहद वाला उदाहरण आपने पहले बताया था।
हाँ बिल्कुल। सेक्स्टस कहते हैं कि संशयवादी ये कह सकता है, देखो ये शहद मुझे मीठा लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये उसका सीधा अपना अनुभव है, उसका फेनोमेना है, और इस अनुभव के आधार पर वो शहद खा भी सकता है, लेकिन वो ये दावा करने से बचेगा कि शहद अपनी असलियत में ही मीठा है।
क्यों, ऐसा क्यों?
क्योंकि हो सकता है किसी बीमार को वही शहद कड़वा लगे, या किसी और जानवर को उसका स्वाद बिल्कुल अलग लगे, या हो सकता है मिठास की हमारी समझ ही अधूरी हो। तो वो अपने अनुभव पर चलता है, पर उसे कायनात का नियम नहीं बनाता।
अच्छा, समझा, मतलब अनुभव के हिसाब से चलो पर उसे परम सत्य मत मानो।
बिल्कुल। इसी तरह वो कानून मानेगा क्योंकि समाज में रहना है, ये व्यवहारिक है, इसलिए नहीं कि वो मानता है कि ये कानून ही एकदम नैतिक रूप से सही है।
आपने कहा कि संशयवादी विरोधी तर्कों की बराबरी, आइसोस्थेनिया, को पहचानता है। क्या उन्होंने इस बराबरी को दिखाने के, मतलब तर्क करने के कुछ पक्के तरीके भी बताए थे? वो मोड्स या ट्रोप्स शायद?
हाँ बिल्कुल, उन्होंने संशयवादी तर्क के तरीकों को व्यवस्थित करने के लिए मोड्स या ट्रोप्स की लिस्ट बनाई। ये असल में क्या है, ये तर्कों के पैटर्न हैं, खांचे हैं।
अच्छा, पैटर्न।
हाँ, जो हमें ये दिखाने के लिए बनाए गए हैं कि देखो, किसी भी विषय पर पक्का ज्ञान होने का दावा करना कितना मुश्किल है। इनका मकसद ये है हमें एपोके तक ले जाना, यानी निर्णय रोकने के लिए प्रेरित करना।
कोई एकाद मोड का उदाहरण देंगे तो शायद ज्यादा साफ हो जाएगा।
जरूर, सबसे मशहूर है एनिसिडिमस के 10 मोड।
अच्छा।
ये हमारी धारणाओं पर फोकस करते हैं कि वो कितनी बदलती रहती हैं, कितनी भरोसेमंद नहीं है।
अच्छा।
जैसे पहला मोड कहता है कि भाई अलग अलग जानवरों के शरीर अलग अलग होते हैं, तो जाहिर है वो एक ही चीज को अलग अलग महसूस करते होंगे। जो हमें अच्छा लगता है, हो सकता है किसी कीड़े के लिए जहर हो, तो कौन सा अनुभव असली है?
हाँ, सोचने वाली बात है।
या तीसरा मोड ले लीजिए, वो कहता है कि हमारी अलग अलग इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, एक ही चीज के बारे में अलग अलग सिग्नल देती हैं। सेब है, आंख कहती है लाल है, गोल है, हाथ कहता है चिकना है, जबान कहती है मीठा खट्टा है। तो सेब असल में क्या है? क्या आंख की बात ज्यादा सच्ची है या जबान की?
मुश्किल सवाल है।
और चौथा मोड है परिस्थितियों का।
जी।
हमारी अपनी हालत, हम बीमार हैं या स्वस्थ, खुश हैं या दुखी, जवान हैं या बूढ़े, ये सब हमारे अनुभव को बदल देती हैं। एक ही गाना खुशी में बहुत अच्छा लगता है, दुख में चुभता है, तो गाने का असली गुण क्या हुआ? तो ये मोड्स हमें दिखाते हैं कि हमारा अनुभव कितना हमारे नजरिए पर, हालत पर, माहौल पर निर्भर करता है। तो फिर कैसे कोई कह दे कि बस मेरा अनुभव ही अंतिम सत्य है?
ये तो सच में दिमाग की बत्ती जलाता है। तो एक तरह की दार्शनिक थेरेपी हुई, जो हमें ये जो निश्चित होने की जिद है ना, उससे होने वाली बेचैनी से आजाद करती है।
सेक्सटस खुद इसकी तुलना थेरेपी से करते थे। उनका एक मशहूर कोट है जिसका मतलब कुछ ऐसा है, संशयवादी क्योंकि वो इंसानियत से प्यार करता है, अपनी तर्क की ताकत से जहां तक हो सके हठधर्मियों के घमंड और जल्दबाजी का इलाज करना चाहता है।
वाह।
वो हठधर्मिता को एक दिमागी बीमारी जैसा देखते थे जो अशांति लाती है, और संशयवाद को उसका इलाज जो शांति अटरैक्सिया लाता है।
इन सब विचारों को उन्होंने लिखा भी? कौन सी किताबें हैं उनकी जो आज हमारे पास हैं, जिनसे हमें पिरोनिज्म की इतनी गहरी समझ मिलती है?
हाँ, ये हमारी खुशकिस्मती है कि उनकी कुछ बहुत जरूरी किताबें बच गईं, और आज प्राचीन यूनानी संशयवाद को समझने के लिए वही हमारा सबसे बड़ा और सबसे व्यवस्थित जरिया है।
कौन कौन सी?
सबसे मशहूर है आउटलाइंस ऑफ पिरोनिज्म या पिरोनिया हाइपोथेसिस, ये 3 किताबों में है। इसे आप पिरोनियन संशयवाद की हैंडबुक या गाइड कह सकते हैं।
अच्छा, मतलब सार संग्रह जैसा।
बिल्कुल, इसमें बहुत साफ और कम शब्दों में समझाया गया है कि संशयवादी दर्शन का लक्ष्य क्या है, अटैरेक्सिया, तरीका क्या है विरोधी तर्क ढूंढना, एपोखे, और उसकी खास अवधारणाएं क्या हैं, आइसोस्थेनिया, फाइनेमेना वगैरह।
और दूसरी कोई बड़ी रचना?
हाँ, दूसरी रचना काफी बड़ी और ज्यादा फैली हुई है, अगेंस्ट द मैथमेटिशियंस। ये 11 किताबों का संग्रह है।
मैथमेटिशियंस मतलब गणितज्ञों के खिलाफ?
नहीं नहीं, यहाँ मैथमेटिशियंस का मतलब सिर्फ गणित जानने वाले नहीं है। उस जमाने में इसका मतलब था किसी भी विषय, मैथमेटा के विद्वान या विशेषज्ञ।
अच्छा अच्छा, मतलब ज्ञानी लोग। तो इसमें वो किन किन ज्ञान के क्षेत्रों पर बात करते हैं?
पहली 6 किताबों में वो निशाना साधते हैं व्याकरण जानने वालों पर, भाषण कला, रिटोरिक सिखाने वालों पर, ज्यामिति, ज्योमेट्री, अंकगणित, ज्योतिष और संगीत के माहिरों पर। वो दिखाते हैं कि इन क्षेत्रों में भी जिन बातों को पक्का माना जाता है, वो असल में कितनी खोखली या कन्फ्यूजिंग हो सकती हैं।
दिलचस्प। और बाकी की 5 किताबें, सुना है वो सीधे दार्शनिकों से भिड़ती हैं?
हाँ बिल्कुल, इसी संग्रह की जो आखिरी 5 किताबें हैं, किताब 7 से 11, उन्हें अक्सर अलग से अगेंस्ट द डॉगमैटिस्ट्स, एडवर्सस डॉगमैटिकर्स भी कहा जाता है। ये सीधे सीधे हठधर्मी दार्शनिकों के जो मुख्य किले थे, तर्कशास्त्र, भौतिकी, फिजिक्स और नैतिकता, एथिक्स, उन पर हमला करती हैं।
बाप रे, मतलब पूरी फिलॉसफी को ही चुनौती।
हाँ, सेक्सटस बारी बारी से इन फील्ड्स के जो जमे जमाए सिद्धांत थे, उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, दिखाते हैं कि उनमें कितनी कमियां हैं, कितने विरोधाभास हैं, कितनी बातें बस मान ली गई हैं बिना सबूत के। और ये किताबें सिर्फ पोरोनिज्म को समझने के लिए ही जरूरी नहीं है,
हाँ,
बल्कि स्टोइसिज्म जैसे विरोधी दर्शनों को जानने के लिए भी अनमोल है। क्योंकि सेक्सटस का तरीका था कि पहले वो विरोधी के तर्क को पूरी डिटेल में बताते थे और फिर उसका खंडन करते थे।
अच्छा, तो उनके विरोधियों के तर्क भी हमें उन्हीं की किताबों से पता चलते हैं।
हाँ, काफी हद तक।
जाहिर है इतने क्रांतिकारी विचार थे तो इनकी आलोचना भी खूब हुई होगी। हमने वो निष्क्रियता अप्राक्सिया वाले आरोप की बात तो की, क्या और भी बड़ी आलोचनाएं थी?
हाँ, एक और बहुत जोरदार और बार बार उठाई जाने वाली आलोचना है आत्मखंडन की, सेल्फ रेफ्यूटेशन।
आत्मखंडन?
हाँ,
वो कैसे?
आलोचक कहते थे, देखो भाई, अगर संशयवादी ये कहता है कि कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जाना जा सकता, तो ये बात कि कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जाना जा सकता, ये खुद में एक निश्चित दावा है ना?
हाँ, ये तो है।
तो अगर ये दावा सच है, तो कम से कम एक चीज तो पक्के तौर पर जानी जा सकती है, यही कि कुछ नहीं जाना जा सकता। और अगर ऐसा है तो संशयवाद तो खुद ही गलत साबित हो गया।
और अगर ये दावा सच नहीं है,
तो फिर संशयवाद वैसे ही गलत है। मतलब ये एक तरह का लॉजिकल जाल लगता है जिससे निकलना मुश्किल है।
हाँ, ये तो वाकई फंसाने वाला तर्क है। सेक्सटस इस जावे से कैसे निकले या निकल पाए?
सेक्सटस ने इसका जवाब बड़ी समझदारी और कहूंगी ईमानदारी से दिया। पहली बात वो कहते हैं कि भाई, सच्चा पिरोनियन संशयवादी ये दावा या विश्वास भी नहीं रखता कि कुछ नहीं जाना जा सकता। ऐसा कहना भी तो एक तरह की हठधर्मिता हुई ना, नेगेटिव डॉगमेटिज्म।
अच्छा, तो वो ये भी नहीं कहता?
जैसे जुलाब पेट साफ करके खुद भी शरीर से बाहर निकल जाता है ना? वैसी संशयवादी तर्क जो हैं, वो हठधर्मी विश्वासों को दिमाग से निकालकर खुद भी खत्म हो जाते हैं। वो कोई नई सच्चाई स्थापित करने के लिए नहीं है।
ये बढ़िया उपमा है।
एक और मशहूर उपमा है सीढ़ी की। आप संशयवादी तर्कों की सीढ़ी पर चढ़कर हठधर्मिता की छत से नीचे उतरते हैं और फिर उस सीढ़ी को भी लात मारकर गिरा देते हैं।
अच्छा, मतलब वो तर्क सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं, और वो खुद पर भी लागू होते हैं।
बिल्कुल, यही समझना जरूरी है। वो खुद को भी काट देते हैं।
ये समझना तो काफी अहम है। अब अगर हम सेक्सटस के असर की बात करें, उनकी विरासत की, तो ये जानना दिलचस्प होगा कि इन विचारों ने बाद के जमानों पर क्या असर डाला।
ये कहानी भी बड़ी रोचक है। देखिए, पश्चिमी रोमन साम्राज्य जब खत्म हुआ, तो मध्य युग में यूरोप में जहां लैटिन चलती थी, वहां सेक्सटस का काम लगभग गायब हो गया। लोग भूल गए।
अच्छा, खो गया था मतलब?
हाँ, लगभग। लेकिन फिर 16वीं सदी में पुनर्जागरण, रेनेसा के टाइम, उनकी किताबें फिर से मिली और उनका लैटिन में अनुवाद हुआ। और जैसे ही ये हुआ, यूरोप के विचार जगत में जैसे धमाका हो गया। इसने एक संशयवादी संकट पैदा कर दिया।
संशयवादी संकट?
हाँ, सोचिए, वो धर्म सुधार का जमाना था। कैथलिक, प्रोटेस्टेंट सब कह रहे थे कि हमारा विश्वास ही सच्चा है। और तभी सेक्सटस के तर्क सामने आ गए, जो कह रहे थे, क्या किसी भी तरह की धार्मिक या दार्शनिक निश्चितता मुमकिन भी है? सब हिल गए।
किन बड़े विचारकों पर इसका सीधा गहरा असर पड़ा, कोई नाम?
सबसे बड़ा नाम तो है फ्रांसीसी विचारक मिशेल डी मोंटेन। उनके मशहूर एसेज है ना?
हाँ, निबंध।
उनमें पिरोनियन संशयवाद की छाप हर जगह दिखती है। वो बार बार इंसानी ज्ञान की सीमाओं पर, हमारी धारणाएं कितनी बदलती रहती हैं, अलग अलग संस्कृतियों में कितने अलग विचार हैं, इन सब पर सवाल उठाते हैं और अक्सर सेक्सटस का जिक्र करते हैं।
और डेकार्त, रेने डेकार्त पर भी तो असर था?
हाँ, रेने डेकार्त, जिन्हें आधुनिक दर्शन का पिता कहते हैं, उनका वो मशहूर तरीका है ना, कट्टर संदेह का। मतलब हर उस चीज पर शक करो जिसपे जरा भी शक हो सकता है।
हाँ, वो सब कुछ पर शक करने वाला।
वो असल में सेक्सटस ने जो चुनौती खड़ी की थी, उसी का जवाब देने की कोशिश थी। पर मजा देखिए, दोनों का मकसद बिल्कुल उल्टा था।
कैसे?
सेक्सटस शक का इस्तेमाल करते थे शांति, अटारेक्सिया पाने के लिए, और ये मान लेने के लिए कि पक्का ज्ञान शायद नहीं मिलेगा। जबकि डेकार्त ने शक को एक औजार बनाया, ताकि वो शक करते करते एक ऐसी चीज खोज निकाले जिस पर बिल्कुल शक ना हो सके। वो मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ वाली बात।
अच्छा, मतलब शक से निश्चितता तक पहुंचना चाहते थे डेकार्त।
हाँ, ताकि उस नींव पर ज्ञान की पक्की इमारत खड़ी कर सके।
और 18वीं सदी में डेविड ह्यूम, उन पर भी तो असर माना जाता है।
हाँ, बिल्कुल। स्कॉटलैंड के दार्शनिक डेविड ह्यूम, उनके अनुभववाद को तो अक्सर नव पिरोनिज्म ही कहा जाता है, खासकर जब वो कारण और प्रभाव कॉजेशन के हमारे ज्ञान पर सवाल उठाते हैं।
हाँ, वो बिलियर्ड बॉल वाला उदाहरण
जी, या जब वो कहते हैं कि हमारा स्व या आत्मा जैसी कोई स्थायी चीज हमें अनुभव में मिलती ही नहीं, या जब वो आगमन तर्क इंडक्शन की कमजोरी दिखाते हैं। ये सारी बातें सीधे सीधे सेक्स्टस एम्पिरिकस के तर्कों की याद दिलाती हैं। ह्यूम मुनि की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे।
तो मतलब आज भी उनका काम प्रासंगिक है?
बहुत ज्यादा। आज भी ज्ञान मीमांसा, एपिस्टमोलॉजी यानी ज्ञान कैसे मिलता है, उसकी सीमाएं क्या है, इस फील्ड में सेक्स्टस का काम एक सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट है। उनके सवाल आज भी विज्ञान, धर्म, नैतिकता, हर फील्ड में जो लोग दावा करते हैं ना कि बस यही अंतिम सत्य है, उन दावों को चुनौती देते रहते हैं।
क्या हम उनके कुछ ऐसे छोटे सूत्र या कथन देख सकते हैं जो उनके दर्शन का निचोड़ बताते हों, याद रखने में आसान हो?
हाँ, कुछ प्रमुख सूत्र ऐसे हैं। पहला तो वही, हर तर्क के विरोध में एक समान रूप से मजबूत तर्क होता है। ये उनकी पूरी मेथड का आधार है। इसी से आइसोस्थेनिया और फिर एपोखिया आता है। दूसरा एक छोटा सा सूत्र है, इससे ज्यादा वो नहीं या न यह न वह, यूनानी में उमा लोन।
उमा लोन,
हाँ। ये क्या दिखाता है कि जब दो विरोधी बातें सामने हों तो संशयवादी किसी एक को दूसरे से बेहतर मानने से इनकार करता है। वो कहता है न ये ज्यादा सही है न वो।
हाँ।
और तीसरा, उनकी किताब आउटलाइंस ऑफ प्यूरोनिज्म की शुरुआत में जो परिभाषा है, जिसका मतलब हमने पहले समझा था, संशयवाद एक क्षमता है जो दिखावे, फिनोमेना और विचारों को, निर्णयों, जजमेंट्स को हर तरह से आमने सामने रखती है, जिससे विरोधी चीजों और तर्कों की बराबर ताकत के कारण हम पहले निर्णय स्थगन, एपोखे और फिर शांति, अटारेक्सिया तक पहुंचते हैं। ये उनके पूरे प्रोजेक्ट का एक तरह से नक्शा है।
सेक्स्टस के बारे में कुछ और रोचक बातें, कुछ ऐसा जो अब तक शायद उतना सामने नहीं आया?
एक बात जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है वो है उनका डॉक्टर होना, और वो भी एम्पिरिकल स्कूल का। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता।
हाँ, हमने बात की थी इस पर।
उनके दर्शन और उनकी डॉक्टरी में एक गहरी समानता है। दोनों ही हवा हवाई सिद्धांतों के बजाय किस पर जोर देते हैं? प्रत्यक्ष देखने पर, अनुभव पर और व्यवहारिक नतीजों पर। इससे उनका संशयवाद सिर्फ दिमागी कसरत नहीं रह जाता, उसे एक जमीनी प्रैक्टिकल आधार मिलता है।
और ये भी कि वो खुद को कोई नया विचार देने वाला नहीं, बल्कि एक तरह का जमा करने वाला संरक्षक मानते थे।
हाँ, ये पहलू भी बहुत जरूरी है। सेक्स्टस एक महान संरक्षक थे और कह सकते हैं संकलन प्रतिभा थे। उन्होंने अपने से पहले के सैकड़ों साल के संशयवादी तर्कों को, उनके तरीकों को, उदाहरणों को बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया, उन्हें तरतीब दी और साफ भाषा में लिखा। अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो पिरोनियन संशयवाद शायद आज हमें पता ही ना होता, खो गया होता। और जैसा मैंने पहले कहा, उनकी किताबों से हमें सिर्फ संशयवाद का ही नहीं,
हाँ, स्टोइसिज्म जैसे विरोधियों का भी पता चलता है।
जी, क्योंकि वो खंडन करने के लिए पहले विरोधी की बात पूरी बताते थे, तो एक तरह से वो अनजाने में अपने दुश्मनों के विचारों के भी संरक्षक बन गए।
वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो अगर समेटना हो तो सेक्स्टस एम्पिरिकस का मुख्य योगदान क्या कहेंगे, एक लाइन में?
मुख्य योगदान ये है कि उन्होंने प्राचीन पिरोनियम संशयवाद को एक व्यवस्थित लॉजिकल रूप दिया और उसे सिर्फ एक ना कहने वाला दर्शन नहीं बनाया, बल्कि मानसिक शांति, अटारेक्सिया पाने का एक पॉजिटिव, प्रैक्टिकल, यहाँ तक कि एक थेरेप्यूटिक रास्ता बताया। उन्होंने दिखाया कि दिमागी विनम्रता और फैसला रोकने की हिम्मत, अपोखे, हमें हठधर्मिता, डॉगमेटिज्म के दुख से बचा सकती है।
और चलते चलते आज के हमारे इस दौर के लिए इस ज्ञानोगोष्ठी से हम क्या सोच लेके जा सकते हैं?
देखिए, आज की दुनिया कैसी है, सूचनाओं का अंबार है। सोशल मीडिया पर हर कोई फौरन एक्सपर्ट बन जाता है, अपनी राय देता है।
हाँ, और दूसरों के विचारों के प्रति सब्र कम होता जा रहा है।
बिल्कुल, हर कोई सही होना चाहता है, अपने विश्वास को ही आखिरी सच मानता है। ऐसे में सेक्स्टस एम्पिरिकस की बातें, मतलब ये समझना कि हमारे जानने की सीमाएं हैं, कि विरोधी बातों में भी दम हो सकता है, और ये कि हर बात पर तुरंत फैसला सुना देना जरूरी नहीं है, ये बातें शायद आज पहले से भी ज्यादा काम की है। उनकी सिखाई हुई वो दिमागी विनम्रता और वो एपोखे का अभ्यास शायद हमें इस शोर शराबे में थोड़ी शांति, थोड़ा संतुलन दे सकता है।
आज की इस बटी हुई दुनिया में क्या हम सेक्स्टस से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम कुछ मुद्दों पर, खासकर जिन पर हमें पूरी जानकारी नहीं है या जहां बहुत गहरे मतभेद हैं, अपने फैसलों को, अपनी राय को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं?
क्या पता नहीं कहना, या मैं अभी श्योर नहीं हूं मानना कमजोरी है, या फिर ये दिमागी ईमानदारी और शायद मन की शांति की तरफ एक कदम है?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्चुअल फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।